From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
City के Temple Square स्थित सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजे का 186वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन का शनिवार दोपहर का सत्र है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र का संगीत प्रोवो यूटा के प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र के प्रचारकों के गायक मंडली द्वारा उपलब्ध किया गया है। ये प्रसारण वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार अध्यक्ष डीटर एफ ओकडोर्फ इस सत्र का संचालन करेंगे।
Dear brothers and sisters, we welcome you to the
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे मित्रों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के अर्जी जीगे के 186वें अर्थवार्षिक महासम्मेलन नामक का स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने मुझे इस सत्र का संचालन करने को कहा है। हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो हमारी कार्रवाइयों को विभिन्न स्टेक सेंटरों और या अन्य मीन द्वारा देख रहे हैं। इस सत्र का संगीत प्रचारकों के प्रशिक्षण केंद्र प्रोवो यूटा के प्रचारकों की गायक मंडली द्वारा दिया जाएगा, जो रायन एगेट और एल्मो केक और लिंडा मार्गेट्स और बोनी गॉडलिफ के ऑर्गन पे होंगे। गायक मंडली इस सत्र का आरंभ जोसेफ स्मिथ्स फर्स्ट प्रेयर गाकर करेगी। प्रारंभिक प्रार्थना इसके पश्चात एल्डर डैनियल एल जॉनसन सत्र द्वारा दी जाएगी। अध्यक्ष हेनरी बी एरिंग प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार अब जनरल के कार्यकाल और क्षेत्रीय सत्र का समर्थन के लिए प्रस्तुत करेंगे।
Amen. Our Heavenly Father, we humbly bow our heads this afternoon as we are gathered.
हमारे पिता, हम जब इस दिन में इकट्ठे होते हैं इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में आपके सिखाए जाने के लिए, आपसे कुछ सीखने के लिए, हम भविष्यवक्ता थॉमस मॉन्सन के लिए धन्यवादित हैं। हमारे पिता, जिन्होंने आज की टॉक तैयार करी है, उनको ब्लेस करिए कि वो हमसे वह कह पाए जो हमें, जिसकी हमें जरूरत है, और जो भी वो कहना चाहते हैं सरल तरीके से कह पाए, और हम सबको भी ब्लेस कीजिए जो हम सुनेंगे, ताकि हम अपने कार्य अनुसार और हम हमारी जरूरत अनुसार हम चीजों को सीख पाए, और ये सब हमें आपके पास लेके आ पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Brothers and sisters, President Monson is invited.
भाई और बहनों, अध्यक्ष मॉन्सन ने मुझे गिरजे के जनरल अधिकारी और सत्र की परिषद के नाम पर प्रस्तुत कर आपके समर्थन चुनाव के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि थॉमस स्पेंसर मॉन्सन का भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकटकर्ता और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजा के अध्यक्ष के रूप में है। हेनरी बेनियन आयरिंग का प्रथम अध्यक्षता में पहले सलाहकार के रूप में और डीटर फेडरिक उच्च्ट्रॉफ का प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार के रूप में समर्थन करें। जो पक्ष में हैं इसे प्रकट करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई इसे प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम रसल मैरियन नेल्सन को 12 प्रेरितों के परिषद के अध्यक्ष के रूप में, रसल एम नेल्सन, डेलिन एच ओक्स, रसल बैलर्ड, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलैंड, डेविड ए बेडनार, क्विंटन एल कुक, डी टॉड क्रिस्टोफर्सन, नील एल एंडरसन, रॉनल्ड ए रस्बन, गैरी ई स्टीवेंसन और डेल जी रनलैंड। जो पक्ष में हैं इसे प्रकट करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई इसे प्रकट करें। सीयर्स एंड रेवलेटर्स, सब पक्ष में हैं इसे प्रकट करें। जो विरोध करते हैं यदि कोई प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम हार्दिक प्रशंसा के साथ एल्डर डेनियल एल जॉनसन, जारियो मेजारगार्डी, कैंट ई एफ रिचर्ड्स, फ्रांसिस्को जे विनेस को जनरल स्तर के सेवा मुक्त स्थिति प्रदान करें। हम एल्डर पर जी मॉम की भी सेवा में नोट करते हैं, जो जुलाई 26, 2016 को गुजर गए। हम अपना प्रेम और हार्दिक संवेदना बहन माम और उनके बच्चों और पोते पोतियों की ओर प्रकट करते हैं। वे जो भाइयों आभार व्यक्त कर उनकी सेवा के लिए करने में हमारे साथ शामिल हैं, कृपया इसे प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि एलन आर वॉकर क्षेत्र के 70 को सेवा मुक्त करें। वे सब जो श्रद्धक से भाई वाकर को उनकी सेवा के लिए आभार व्यक्त करने में हमारे साथ शामिल हैं, कृपया इसे प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम निम्न क्षेत्र के स्तर भानु के हिरन नंदनी और सेंडेनियो रोमन का समर्थन करें। जो पक्ष में हैं इसे प्रकट करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई, जो पक्ष में हैं इसे प्रकट करें।
Contrary, if there be any by the same sign. President Monson, the voting has been noted.
अध्यक्ष मॉन्सन, भाइयों और बहनों, गिरजे के अध्यक्षों की ओर धन्यवाद आपके निरंतर विश्वास और प्रार्थना के लिए।
Of the leaders of the church. Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters. The choir will now favor us with a musical number titled Baptism. Following the singing, we will hear from Elders Quinton L.
Cook. Hum Elders Quinton L. Cook, Gary Eviston, Bara ki parishad ko sunenge.
Eternal life is the greatest gift of God and is bestowed on those who keep God's commandments.
अनंत जीवन परमेश्वर का अति महान उपहार है और ये उनको प्रदान किया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और अंत तक बने रहते हैं और दूसरी तरफ स्वर्गीय पिता के साथ अनंत जीवन को नकारते हैं। वे जो यीशु की गवाही में साहसी नहीं है, यहाँ पर कोई प्रगति न कर देने की रुकावटें हैं जो हम साहसियों के अनंत जीवन तक पहुंचने नहीं दे सकती हैं। प्रगति न करने की रुकावटें जटिल हो सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूं। कई सालों पहले मेरे पिता ने एक छोटा केबिन की मजबूत संपत्ति के भाग में बनाया जहां पर वो पाले बड़े हुए थे। घास के मैदान में खाका असाधारण थी। जब केविन के लिए दीवारें बनाई गई, मैं वहां गया। मैं चकित हुआ कि मैदान की तरफ खिड़की का नजारा में सीधे बिजली का खंभा था जो घर से थोड़ी दूर पर था। मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत दृश्य से ध्यान भटकाने वाला था। मैंने कहा, पिताजी आपने क्यों उन्हें अपनी खिड़की के सीधे सामने बिजली का खंभा लगाने दिया? मेरे पिता एक असाधारण अभ्यास करने वाले और शांत पुरुष थे। कुछ भाव के साथ कहते हुए बोले, क्विंटन, ये बिजली का खंभा मेरे लिए पूरी संपत्ति में सबसे खूबसूरत चीज है। तब उन्होंने अपना नजरिया रखा। जब मैं उस खंभे को देखता हूँ, मैं उसे पहचानता हूँ। अप्रसन्नता से जब यहाँ बड़ा हुआ, मुझे पानी के डब्बे को झरने से घर पकाने, मेरे हाथ धोने या नहाने के लिए नहीं ले जाना पड़ेगा। मुझे रात में पढ़ने के लिए मोमबत्ती या दिया जलाना नहीं पड़ेगा। मैं उसे बिजली के खंभे को सीधी खिड़की के बीच से देखना चाहता हूँ। मेरे पिता का बिजली के खंभे को देखने में अलग दृष्टिकोण था। उनके लिए वो खंभा एक जीवन को सुधारने का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन मेरे लिए ये उन्नति का अति सुंदर नजारा प्रगति में रुकावट था। मेरे पिता ने बिजली, रोशनी और सफाई को एक सौंदर्यपूर्ण दृश्य से ऊपर आंका था। मैं तुरंत ही समझ गया कि खंभा मेरे लिए, जबकि प्रगति में रुकावट था, ये मेरे पिताजी के लिए बड़ा साधारण प्रतीकात्मक अर्थ था। एक प्रगति में रुकावट, एक भरोसा या समझदारी में बाधा है, या एक उन्नति में अड़चन कुछ भी हो सकता है जो हमारे योग्य उद्देश्य को पाने से भटकाता है। हम पिता और पुत्र की अपनी गवाही को परेशानी और जटिलता द्वारा प्रगति में रुकावट बनने नहीं दे सकते हैं। हम जाल में फंस नहीं सकते हैं। हमारी गवाहियां हमेशा शुद्ध और साधारण रहती हैं, जैसे मेरे पिता का उनके जीवन पर, जहां वो पले बड़े हुए थे, बिजली के खंभे को बचाना था। कुछ प्रगति की रुकावटें क्या हैं जो कि पिता और पुत्र की हमारे उस साहसी रहने देने वाली हमारी शुद्ध और साधारण गवाही को परेशान और उलझा देती है? एक उन्नति की रुकावट मनुष्य की फिलॉसफी है। हमें हर प्रकार के ज्ञान और विश्वास के प्रति वचनबद्ध होना परमेश्वर की महिमा की बुद्धिमानी है, लेकिन हम विपत्तियों की मुख्य रणनीति को भी जानते हैं, जो लोगों को परमेश्वर से दूर करती हैं और उनको उद्धारकर्ता और उसके शिक्षाओं से ऊपर मनुष्य की फिलॉसफी पर जोर देने के कारण से होती हैं। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का सच्चा गवाह उद्धारकर्ता के साथ चमत्कारी और जीवन परिवर्तित अनुभव के कारण हुआ था। पौलुस के अनोखे अतीत ने उसे कई लोगों की संस्कृति से जोड़कर तैयार किया था। वो थिस्सलुनीकियों की अस्पष्ट साधारणता से और फिलिपियों के कोमल दया भाव से प्रेम करता था। उसे शुरू से यूनानियों की बुद्धिमानी और जटिलता से जुड़े रहने में अधिक कठिनाई लगती थी। एथेंस में मार्स हिल पर उसने फिलोसफिकल अनुरोध करने की चेष्टा की और नकार दी गई थी। कुरिन्थियों के लिए उसने सच्चे लगन से मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाने के सिद्धांत की शिक्षा दी थी, प्रेरित पौलुस के स्वयं के शब्दों का प्रयोग करते हुए। और मेरे प्रचार और मेरे विचार में मनुष्य के लुभावने, बुद्धि और शब्द नहीं थे, परंतु पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की बुद्धि पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर बनी रहे। उद्धारकर्ता के और उसकी सेवकाई के कुछ अति महाप्रतापी धर्मशास्त्र के लेखों को 1 कुरिन्थियों में रखा गया। एक अध्याय ने संसार भर के ध्यान जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल्स मिसाया के अभिनय द्वारा पाया था। इसमें उद्धारकर्ता के सिद्धांत के विषय में गहराई है। मसीहा के तीसरे भाग में तुरंत ही हेलुलिसा कोरस के बाद अधिकतम धर्मशास्त्रों का प्रयोग 1 कुरिन्थियों 15 से किया गया। इन कुछ आयतों में पौलुस ने सुंदरता से उद्धारकर्ता ने जो कुछ पूरा किया था का वर्णन है, पर सचमुच मसीह मृतकों में से जी उठा है, जो सो गए हैं उन्हें पहला फल हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तब मनुष्य के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरी विजय कहाँ रही? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयतवंत करता है। हम जानते हैं धर्म त्याग मनुष्यों की फिलॉसफी के कारण मसीह के मूल के ऊपर उठकर विशेष नियम के भागों में शुरू हुआ था। उद्धारकर्ता के संदेशों की शालीनता के बावजूद बहुत से अमूल्य सत्य को बदल दिया या खो दिया गया। असल में मसीहत की यूनानी फिलोसफिकल संस्कृति के कुछ उनके विश्वास उनके हाल की संस्कृति को ग्रहण किया। इतिहासकार विल ड्यूरन लिखता है, मसीहत बुद्ध परस्ती को नष्ट नहीं करता, वो ग्रहण करता है। यूनानी दिमाग मरता हुआ जीवन को बसने आता है। इतिहासकार और हमारे स्वयं के दिनों में कुछ लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को नकारा, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये पर्याप्त बौद्धिक मिलावट नहीं है। पुनस्थापना के आरंभ पर बहुतों ने उद्धारकर्ता की शिक्षाओं को कम से कम अनुसरण करने का जाहिर किया। बहुत से देश अपने आप को मसीही राष्ट्र मानने लगे, परंतु इसके बावजूद वहाँ फिर भी हमारे दिन के लिए अधिकतम कठिन समय की भविष्यवाणी थी। हिबर से कि मलिस युग की एक वास्तविक 12 प्रेरितों और अध्यक्ष ब्रिगम यंग के प्रथम सलाहकार थे। उन्होंने चेतावनी दी थी, समय आएगा जब हम इसे हाल ही की शांतिपूर्ण घाटी में कुछ इस तरह से मिल जाएंगे कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध संत का चेहरे में से एक दुश्मन का चेहरा बताने में कठिनाई होगी। तब बड़ी छलनी से बाहर देखने के लिए समय होगा, क्योंकि वहां पर छानबीन करने का बड़ा समय आएगा और बहुत से गिर जाएंगे। वो समाप्त करते हैं, वहां पर परीक्षा आएगी। हमारे दिनों में मसीहत का प्रभाव कई देशों में था। यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, विशेषकर कम है। बिना धार्मिक भरोसे के परमेश्वर के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रहेगा। इसके अनुसार ये विश्व मूल्यों की स्थापना करने के बारे में कैसे जिए कठिन है। फिलोसफी जो गहरी अक्सर एक दूसरे के संघर्ष करती रहेंगी। दुर्भाग्य से ये गिरजे के कुछ सदस्यों के साथ भी हुआ है, जिन्होंने अपनी आचरण को खो दिया और क्षण के कारण प्रभावित हो गए, बहुत से जो योग्य नहीं थे। हिबर्सी किम्बल की भविष्यवाणी की पंक्ति के साथ एडलन नील मैक्सवेल ने 1982 में कहा था, बहुतों की छानबीन एकता के व्यवहार में गिरने के कारण जो पश्चाताप नहीं करते से शुरुआत होगी। कुछ अंत तक पकड़े रहने के बावजूद छोड़ देंगे, कुछ दल बदलियों के द्वारा धोखा खाएंगे, उसी तरह दूसरे अपमानित होंगे। उनके हर युग की प्रगति की रुकावट के लिए पर्याय। दूसरा प्रगति की रुकावट है पाप को उसी की सच्ची रोशनी में देखने से इनकार करना। हमारे दिनों के एक अनोखे और परेशानी देने वाले तत्व है कि बहुत से लोग पाप भरे आचरण में लगे हुए हैं, लेकिन वे पापी होने के विचार को नकारते हैं। उनका कोई ग्लानी या इच्छा नहीं है अपनी करनी को पहचानने की, वो नैतिक रूप से गलती करते हैं। यहाँ तक कुछ पिता और पुत्र में भरोसा कर अंगीकार करते वे गलत तरह से कदम उठाएंगे कि एक प्रिय स्वर्ग में पिता को उनके आचरण के लिए जो कि आज्ञाओं के विपरीत हो परिणाम नहीं लेना चाहिए। ये कदम जाहिर तौर से मार्मन के पुस्तक में छोटे अल्मा के पुत्र ने कुरियंदन द्वारा उठाया गया था। वो अनैतिक गंभीर कामों में लगा हुआ था और अल्मा द्वारा सलाह दी गई थी। वो आशीषित है कि महान भविष्यवक्ता अल्मा, जिनके व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, भयानक अंधकार में खो में था और आश्चर्य मैं प्रकाश में हूँ, उसने दिए गए निर्देश को लेखांकित किया गया था। अल्मा के 39 अध्याय में दिया गया, हम पढ़ते हैं कि उनमें से इस पुत्र की सलाह पश्चाताप की प्रतिक्रिया के द्वारा से दी गई और बताया गया मसीह ने आकर पाप ले लिए थे। उनके पश्चाताप की जरूरत को कुरियंदन के लिए स्पष्ट कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी अशुद्ध वस्त्र परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सक। अल्मा 42 में कुछ अति अद्भुत प्रायश्चित के सिद्धांत सारे धर्म शास्त्र में दिए गए। अल्मा ने कुरियंदन को समझाने में मदद की कि पापी को दुर्गति की स्थिति में रखना उचित नहीं, परंतु वो नोट करता है कि अल्मा के शुरुआत की जाए। दयालु परमेश्वर ने पश्चाताप करने के अवसर प्रदान करता है, क्योंकि पश्चाताप के बिना मुक्ति की योजना निरर्थक हो जाती है। अल्मा प्रमाणित करता है कि प्रवेश की योजना आनंद की योजना है। अल्मा की शिक्षा अति निर्देशन देती है, क्योंकि सुनो, न्याय अपने पूरे विधानानुसार काम करता है और दया उस पर अदड़कार करती है जो क्षेत्र में है। इस तरह और कोई नहीं, केवल सच्चे परिपाटी ही बचाए जाते हैं। उसकी भीतरी सच्ची ज्योति देखिए। पश्चाताप की महिमा, आशीषें और उद्धारकर्ता की शिक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। साफ रहना ये कोई गलत बात नहीं है। पापों के परिणाम के चुनाव और पश्चाताप की कमी के कारण अल्मा कुरियंदन का साथ था। इसे अक्षर घोषित किया गया था। अभी ये बाद में सभी को पश्चाताप के गुलदस्ते के नीचे बैठना पड़ता है। अति अद्भुत और उद्धारकर्ता के प्रयासचित की स्लेटीय आशीष वो है कि पश्चाताप से पाप भरे चीजों के बाहर निकाल देती है। कुरियंदन के पश्चाताप के बाद अल्मा समाप्त करता है, ये बातें तुम और चिंतित ना करें, केवल तुम्हें तुम्हारे पाप कस दें और कष्ट ही तुमसे पश्चाताप करवाएंगे। चिन्ह से परे देखना एक प्रगति की रुकावट है। भविष्यवक्ता याकोब प्राचीन यहूदियों को संदर्भ करता, हठी लोग थे जो स्पष्ट बातों का निराधार करते थे, भविष्यवक्ताओं के प्राण लिए और ऐसी बातों को ढूंढने लगे जिन्होंने वो समझते भी नहीं थे, इसलिए वे अपने लक्ष्य के कारण प्राप्त पर्याप्त अंधेपन के कारण गिरेंगे। जब तक यहाँ पर आगे देखने के लिए चिन्ह के उदाहरण है, हमारा एक महत्वपूर्ण दिन चरमपंथी होता है। सुसमाचार का चरमपन अब एक सुसमाचार का कोई नियम दूसरे महत्वपूर्ण नियम को समानता से ऊपर लेता है और कदम बढ़ता है जो कि गिरजा के मार्गदर्शकों की शिक्षा से परे या विपरीत होता है। एक उदाहरण है जब एक वकील के लिए अतिरिक्त बदलाव या शब्द के ज्ञान का एक भाग को प्राथमिकता जोड़ देता है। अन्य अंतिम दिनों के लिए महंगी तैयारी करना का सिनेरियो है। दोनों उदाहरणों में दूसरे उत्साहित होकर नीची अनुवाद स्वीकारते हैं। अगर हम स्वास्थ्य के नियम को घुमाएं या कोई भी अन्य नियम को धार्मिक खट में बदले, हम चिन्ह के आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत के लिए बोलना प्रभु घोषित करता है, जो कोई इसे अधिक या कम घोषित करता है सामान्य मेरा नहीं है। जब हम किसी नियम की इस तरह से उठाते हैं जो कि हमारी वचनबद्धता को अन्य से समान महत्वपूर्ण नियम या हो विपरीत कदम उठाएं या गिरिजे के मार्गदर्शन की शिक्षा को कायम रखें, हम चिन्ह से परे देखते हैं। अतिरिक्त में कुछ सदस्य कारणों को उठाते हैं। बहुत से अच्छे होते हैं जो सुसमाचार सिद्धांत के मूल उच्चतम स्तर के होते हैं। वे अपनी भक्ति के कारण पहला वचनबद्धता के रूप में का विकल्प कर और निर्वासित करते हैं, अपने वचनबद्धता को उद्धारकर्ता और उसकी शिक्षा को दूसरे स्थान पर रखते हैं। यदि हम किसी भी चीज के हमारे उद्धारकर्ता की भक्ति से ऊपर रखते हैं, यदि हमारे आचरण उसे सिर्फ एक अन्य शिक्षक के रूप में पहचानते हैं और परमेश्वर के पवित्र पुत्र के रूप में नहीं, तब हम चिन्ह से परे देखते हैं। यीशु मसीह ही चिन्ह। The 76th section of the Doctrine and Covenants makes it clear, being valiant in the testimony of Jesus. सिद्धांत और अनुबंध का 76वां भाग स्पष्ट करता है, यीशु की गवाही में साहसी रहना साधारण है। उसके बीच की विशेष परीक्षा जो स्टेलियल राज्य के आशीषों के वारिस हैं और जो कम टेलेस्टियल राज्य के हैं, साहसी होने के लिए यीशु मसीह की शक्ति पर ध्यान दें और प्रायश्चित बलिदान से मृत्यु से ऊपर उठने और पश्चाताप द्वारा पापों का अपना शुद्धिकरण करने और मसीह के नियमों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। हमें उद्धारकर्ता के जीवन से ज्योति और ज्ञान का और अनुबंध के मार्ग पर मार्गदर्शन की शिक्षा, साथ ही मंदिर में पवित्र धर्माविधियों की भी जरूरत है। हमें मसीह में दृढ़ रहना चाहिए, उसके वचनों पर उत्सव करना चाहिए और अंत तक बने रहना। यदि हम यीशु की अपनी गवाही में साहसी बनेंगे, हम प्रगति की रुकावटों में जो बहुत ही अन्य रूप आदरणीय पुरुष और स्त्री को फंसाते हैं, अड़चन डालते हैं, को नजरअंदाज करना चाहिए। चलो हम हमेशा उसके सेवा में रहने का निर्णय लें। तब तक ज्ञान को ढूंढते हैं हम मनुष्य के फिलोसफीज को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है, जो कि हमारी उद्धारकर्ता से वचनबद्धता कम करता है। हमें पाप को उसी के सच के प्रकाश में देखना और पश्चाताप कर उद्धारकर्ता के प्रायश्चित द्वारा स्वीकार करना है। हमें चिन्ह से आगे देखकर नजरअंदाज करने की जरूरत है और यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता पर केंद्रित रहना। मेरे पिता ने खंभे को बिजली, प्रकाश और पकाने की सफाई के लिए पानी देते हुए देखा था। वो उनके जीवन में सुधार करने वाला प्रारंभिक प्रयास था। एक लेखक ने सुझाव दिया कि प्रारंभिक रुकावटें दया के पात्र और स्वर के प्रारंभिक प्रयास में बदल सकती हैं। हमारे लिए अपनी यीशु की गवाही में साहसी होकर प्रारंभिक प्रयास कर उद्धारकर्ता का अनुग्रह और स्टेलियल राज्य की ओर योग्य हो जाएं। यीशु मसीह के एकमात्र नाम है स्वर्ग के नीचे जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। मैं मेरी सच्ची गवाही दोनों उसकी पवित्र आत्मा और उसके दिव्य अभिनय का पिता की योजना में साक्षी देता हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
In my mind, I imagine you of the rising.
मेरे दिमाग में मैं आपके उभरते वंश को इस संसार में कहीं पर भी सम्मेलन अधिवेशन को देखने या सुनने की कल्पना करता हूं। मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी बांटना चाहता हूं, एक कहानी जो कि दोनों हो सकती है, एक उदाहरण और एक सबक। मैं आपको दिखा सकता हूं कि कैसे प्रभु पर पास जाया जाता है और लालच की बड़ी शक्ति से संघर्ष किया जाता है। यह एक युवती की कहानी है, न्यूयॉर्क में रहती थी, जिसकी उम्र 3 साल, अपने पिता को उसकी नाव में एक बड़ी झील में डूबने को से खो दिया था। वह उसकी माँ, बड़ा भाई, छोटी बहन एक 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 नए शहर में अन्य राज्य में अपनी आंटी अंकल के साथ रहने चले गए थे। परिवार के पहुंचने के कुछ समय बाद प्रचारक और नई संस्था के सदस्य उनके क्षेत्र में पुनर्स्थापन की अनुपम खबर के साथ आए थे। वे एक अनोखी कहानी बतलाते कि एक स्वर्ग दूत ने प्राचीन लेख को एक युवक जोसेफ स्मिथ नामक को दिया। लेखक को अपने उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से अनुवाद किया था। दो मेहमान ओलिवर काउडरी और जॉन विटमर ने वास्तव में प्राचीन लेख के तत्वों पर खुदे हुए पन्ने पर लिखा गया था। उस पर लिखा गया था बुक ऑफ मॉर्मन। जब 12 वर्षीय मेरी ने सुना कि प्रचारक पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं, उसके मन में विशेष अनुभूति हुई। यहाँ तक कि मॉर्मन की बुक बहुत से पन्नों के साथ मोटी सी हो गई थी। मैरी को उसे पढ़ना था। जब भाई विटमर चले गए, उन्होंने एक कीमती पुस्तक की कॉपी भाई इजायक मॉर्ली को दी, जो मैरी के अंकल के मित्र थे और नए गिरजे के में एक स्थानीय मार्गदर्शक। मैरी ने बाद में दर्ज किया था कि मैं भाई मॉर्ली के घर गई और पुस्तक को देखने के लिए कुछ पूछा। उन्होंने मेरे हाथ में रख दी और उन्होंने जैसे मैंने उन्हें देखा, मुझे उसे पढ़ने की अनुभूति हुई थी कि मैं उनसे मांगने के लिए अड़ नहीं सकती थी कि मुझे घर ले जाकर पढ़ने के लिए दे दें। वह बोले उनके पास शायद ही अध्याय पढ़ने का समय होगा, लेकिन कुछ भाइयों के पास उसे पढ़ने का तो हो, परंतु मैंने उनसे लगन से मांगा था। उन्होंने अधिकार कहा, बच्चे यदि तुम इसे नाश्ते से पहले सुबह घर पर ले जाओ आओ तो तुम इसे ले सकती हो। मेरी भागकर घर गई और उस पुस्तक में ऐसी उतरी कि सारी रात जाकर पढ़ती रही। अगले दिन जब उसने पुस्तक वापस की तो मॉर्ली ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा और मैं नहीं समझता कि तुम मुझे उसमें से एक भी बात बता पाओगी। मेरी सीधी खड़ी हुई और मॉर्मन की पुस्तक से पहली आयत याद कर दोहराने लगी। उसने फिर उन्हें भविष्यवक्ता नेफी की कहानी बताई। मैरी बाद में लिखती है, वह मुझे एक तक आश्चर्य से देखते रहे और बोले, बच्चे इस पुस्तक को घर ले जाओ और खत्म कर लो, मैं इंतजार कर सकता हूँ। थोड़े समय के बाद मैरी ने पुस्तक पढ़नी खत्म की और वह सारी पुस्तक को खत्म करने वाली अपने क्षेत्र की पहली व्यक्ति बनी। वह जानती थी कि वह सत्य है और कि वह स्वर्गीय पिता की ओर से आई गई है। जैसे वह पुस्तक को देखती, वह प्रभु को देखती थी। एक माह बाद एक विशेष अतिथि उसके घर आया था। यहाँ पर मेरी उस यादगार दिन के विषय में लिखती है, जब जो स्मिथ ने मुझे देखा, उन्होंने बहुत ध्यान से मुझे देखा। कुछ लम्हों के बाद उन्होंने मुझे एक बड़ी आशीष दी और मुझे एक पुस्तक उपहार में दी और कहा, वह भाई मॉर्ली को दूसरी कॉपी दे दें। हम सभी ने महसूस किया कि वह परमेश्वर के एक व्यक्ति थे, कि वह समर्थ से बोलते और जैसे कि एक के पास अधिकार हो। यह युवा लड़की मैरी एलिजाबेथ रॉलिन ने अपनी जीवन में बहुत से चमत्कार देखे और हमेशा मॉर्मन की पुस्तक की गवाही रखी थी। इस कहानी का विशेष अर्थ है कि मेरे लिए, क्योंकि वह मेरी पांचवी दादी थी। मैरी के उदाहरण से मेरे जीवन में दूसरे अनुभव के साथ जुड़े हैं। मैंने सीखा कि कोई भी इतना छोटा नहीं होता मॉर्मन की पुस्तक के व्यक्तिगत गवाही को खोजने और पाने के लिए। यह मैरी की कहानी मैं आप के लिए व्यक्तिगत सबक है। आप सब युवा पुरुष युवतियों और बच्चों के पास सामान्य अनुभूति हो सकती है जैसे उसके पास थी। जब आप मॉर्मन की पुस्तक पढ़ते और वह सच्ची है जानने की इच्छा के साथ प्रार्थना करते हैं, आपके पास भी वैसी ही अनुभूति प्राप्त हो सकती है अपने हृदय में, जैसे मैरी ने प्राप्त की थी। आप भी पा सकते हैं वैसे जैसे आप मॉर्मन की पुस्तक की गवाही के लिए खड़े होते हैं। आप भी वैसे ही आत्मा का पुष्टिकरण महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा आपके हृदय से बोलेगा। आप भी इस आत्मा की पुष्टि को महसूस कर सकते हैं जब आप दूसरों को मॉर्मन की पुस्तक की उनकी बांटी गई गवाही को सुनते हैं। हर इन जैसी आत्मिक साक्षी आपको मॉर्मन की पुस्तक की ओर ले जा सकती है। आपकी गवाही को कोने का पत्थर बन जाती है। मुझे समझने दें, भविष्यवक्ता जोस में जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य और उपहार के द्वारा मॉर्मन की पुस्तक का अनुवाद किया था, मॉर्मन की पुस्तक का वर्णन किया जैसे धरती पर सबसे सही पुस्तक है और हमारे धर्म का कोने का पत्थर है। जब मैं मॉर्मन की पुस्तक पहली बार 1830 में छपी थी, 74 लाख से अधिक कापियां 110 अलग अलग भाषाओं में छापी गई थी, दर्शाती है कि मॉर्मन की पुस्तक अब भी हमारे धर्म का कोने का पत्थर है। लेकिन इसका आप सब के लिए क्या अर्थ है? कि भाषा में एक कोने का पत्थर दरवाजे को गलाकर मुख्य तत्व होता है। यह पत्थर के आकार का पत्थर बीचों बीच में और एक गोलाकार के उत्तम बिंदुओं पर होता है। यह अंतिम महत्वपूर्ण पत्थर है क्योंकि यह गोलाकार के स्थान पर ठिकाकर रखता है, गिरने से बचाता है और यह संरचनात्मक तत्व है जो दरवाजे ठिकाए या नीचे खुला रहता है, चलने लायक होता है। सुसमाचार भाषा में यह प्रभु की ओर से उपहार और आशीषें हैं जो कि हमारे धर्म का कोने का पत्थर ठोस और कसकर पकड़ हुआ है, जैसे मॉर्मन की पुस्तक जिसे आप पकड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्या आप मॉर्मन की पुस्तक को अपने कोने का पत्थर, अपनी आत्मिक शक्ति का केंद्र हो सकते हैं? अध्यक्ष एडवर्ड बंसी ने जोसेफ स्मिथ की उन शिक्षाओं को बढ़ाया था। वह कहते हैं कि यहाँ पर 3 रास्ते हैं जिनमें मॉर्मन की पुस्तक हमारे धर्म का एक कोने का पत्थर है। यह हमारी मसीह की साक्षी का कोने का पत्थर है, यह हमारे सिद्धांत का कोने का पत्थर है, यह गवाही का कोने का पत्थर है। जैसे जैसे अपनी गवाही बांटी की मॉर्मन की पुस्तक का वचन और यीशु मसीह का अन्य सुसमाचार है, मैंने प्रभावशाली शक्ति के साथ चैन और शांति को मेरे सीने में अनुभूति का एहसास को पाया था। धर्मशास्त्र वर्णन करते हैं जैसे हमारे मन में उत्पन्न हुआ था, इस एहसास के में मेरी शक्तिशाली तरह से मुझे पुष्टि की मनन की पुस्तक सच में परमेश्वर का वचन है। इसी समय मेरी अनुभूतियां और भी मजबूत हो गईं और मेरी आंखों से आंसू आ गए जैसे मैंने इस जापानी दादी माँ से बात की। मैं उस दिन के विशेष एहसास को कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम में से हर कोई इस पुस्तक की व्यक्तिगत गवाही पा सकता है। क्या आपने जाना है कि मॉर्मन की पुस्तक आपके लिए लिखी गई है, आपके दिनों के लिए है। इसका पुस्तक में जीना एक आशीष है जिसे हम इस पूरे समय का युग कहकर बुला सकते हैं। इसलिए मॉर्मन की पुस्तक प्रेरणा से लिखी गई है। प्राचीन लेखकों उनमें से कई भविष्यवक्ता थे और वह उनके समय के लोगों ने पूरी पुस्तक को कोई भी लाभ ना ले सके। आप में से आपके आसपास अब आसानी से पवित्र लेख पहुंचता है जो कि भविष्यवक्ता याचक और राजा का खजाना सम्मिलित कर और सुरक्षित है। आपके पास पूरी मॉर्मन की पुस्तक को पकड़ने का लाभ है। रुचि से एक मॉर्मन की पुस्तक को भविष्यवक्ता मरोनी ने हमारे दिन आपके दिनों के लिए लिखा था। यह आप यहाँ तक आपको देखा कि दिव्य दर्शन में कई हजारों साल पहले मॉर्मन लिखा था। सुनो, प्रभु ने मुझे घृष्ण होने वाली आश्चर्यजनक और महान बातों को दिखाया जो कि उस समय होगी जबकि ये बातें तुम्ही से आएंगी। सुनो, मैं तुमसे उसी तरह बोल रहा हूँ जो मैंने तुम मेरे सामने उपस्थित हो, परंतु तुम यहाँ हो नहीं। लेकिन सुनो, यीशु मसीह ने तुम्हें मुझे दिखाया है और मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूँ। मॉर्मन की पुस्तक की सहायता करने के आदेश में आपकी गवाही कोने का पत्थर बन जाएगी। मैं आपको चुनौती देता हूँ। मैं हाल ही में जाना कि बहुत से युवा लोग लगभग 7 घंटे में एक दिन में टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन के स्क्रीन को देखने में लगाते हैं। इसे दिमाग में रखते हुए क्या आप छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? क्या आप उस छोटे से स्क्रीन का समय बदल सकते हैं, विशेषकर जो कि सामाजिक मीडिया को समर्पित है? इंटरनेट खेल खेलना या टीवी और मॉर्मन की पुस्तक को पढ़ने के साथ, यदि अध्ययन मैंने जो संदर्भ किया है यदि सही है, आप आसानी से रोजाना मॉर्मन की पुस्तक को अध्ययन करने का समय निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ 10 मिनट प्रतिदिन हो, और आप अध्ययन इस तरह से करें कि आप उसका आनंद लें और समझ सकें, चाहे आपके यंत्र में यह पुस्तक हो ना हो। प्रेसिडेंट नेल्सन ने हाल ही में सलाह देते हैं, हमें मॉर्मन की पुस्तक को कभी भी दुखदायक कार्य के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कड़वी दवाई को घूंट को जल्दी से निकलना और फिर अंतिम रूप में जांच करना। आप कुछ युवा बच्चों के लिए आप अभिवादकों दादा दादी नाना नानी या प्रिय के साथ उसे पढ़ सकते हैं। यदि एक अध्याय आयत या भाग कठिन निराशाजनक लगता है, आपके अध्ययन करने में आप अगले और आगे बढ़ते चले जाएं। मैंने आपको मेरी के उदाहरण को अनुसरण करने का चित्र दिया है। मैं आपको उत्तेजना से समय खोजने का और मॉर्मन की पुस्तक पढ़ने के लिए शांत स्थान का चित्रण किया है। मैं आपको जवाब पाते, मार्गदर्शन महसूस करते और आपकी मॉर्मन की पुस्तक और यीशु मसीह की गवाही को पाते देखा है। मैं आप पुस्तक को देखते हैं, आप प्रभु को देखते हैं, आप इस कीमती पुस्तक को के छंदों को से भरे जाएंगे और अपने प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में लगभग सभी पृष्ठों पर मिलेंगे। इसका अनुमान लगाया गया है कि इसमें नाम में इस्तेमाल लगभग हर एक में 1.7 आयतों में किया गया है, यहाँ तक कि मसीह ने खुद ही अपनी सच्चाई की पूर्ति की है, अंतिम दिनों में गवाही दी है। कहते हैं, मैं ही आपका प्रभु और आपका परमेश्वर जीवित है, सत्य है, मैं अमित्र और वादा के लिए आभारी हूँ कि प्रभु ने हम में से प्रत्येक को उन सभी को मॉर्मन जन पुस्तक पढ़ने के लिए आमंत्रित किया है। मैं इस आमंत्रण और वादा और मेरी गवाही को पढ़ने में दोबारा समर्थित करता हूँ। जब तुम को ये बातें प्राप्त होगी, तब तुम्हें से प्रभु के नाम में पूछो कि ये बातें सच्चे नहीं हैं, और अगर तुम सच्चे हृदय से पूछोगे, अच्छी अभिलाषा से मसीह में विश्वास करके पूछोगे, तब वह पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा तुम्हें पर सच्चाई पर करेगा। मैं सुमसमा के पूर्ण आत्मा की गवाही इन अंतिम दिनों में और मॉर्मन की पुस्तक का उस पुरस्थान का ठोस साबूत देता हूँ, जैसे कि पुस्तक के शब्दों में 12 साल की लड़की को यीशु मसीह के गिरजे की पुनर्स्थापना का लगभग 2 शताब्दी पहले प्रेरित किया गया था। सच्चाई आप पाएंगे जहां आपको उभारा और प्रेरित किया जाएगा, उसी तरह से वे आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपकी आत्मा को ज्योति से भर देगा और आपको एक भविष्य की को कठिनाइयों को समझने की क्षमता को तैयार करेगा। पुस्तक के पन्नों के भीतर आपको ना खत्म होने वाला प्रेम और समझने वाली प्रेम का अनुग्रह को पाएंगे। जैसे आप शिक्षा का अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं, वह आपको पाएगा, आपका आनंद बढ़ेगा, आपकी समझ में बढ़ोतरी होगी, नवशरता की कई चुनौतियों के जवाब ढूंढने में आपको सहायता मिलेगी। जैसे आप पुस्तक को देखते हैं, आप प्रभु को देखते हैं। मॉर्मन की पुस्तक पर मैं इसी गवाही देता हूं कि मेरा सारा मन और आत्मा से यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Thank you, brethren. It is now our
धन्यवाद। संगीतकार के निर्देश पर कलीसिया खड़े होकर गायक मंडली के रूप में हम मिलकर गाएंगे मिशनरी के शानदार माइंड कॉल टू सर्व। उसके पश्चात हम बारा की परिषद के परितों के एल्डर टी टॉड क्रिस्टोफर को सुनेंगे। उनके पश्चात 70 के एल्डर्स W. मार्क बेसेट और किजीवी यशमिता बोलेंगे। उसके पश्चात गायन मंडली आई गो वेर आर यू वांट मी टू गो गाएगी।
This is the 186th semi-annual general.
अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 185वां अर्धवार्षिक महासम्मेलन है.
Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that God is love.
Bible हमें बताती है कि परमेश्वर में प्रेम है. वो संपूर्ण प्रेम का अवतार है और हम दुख के भार से निष्ठा और संपूर्ण तरह से उसके प्रेम तक पहुंचते हैं. जैसा अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने व्यक्त किया, परमेश्वर का प्रेम यहाँ तुम्हारे लिए है. आप महसूस करें या न करें, आप प्रेम के अधिकारी हैं. ये केवल वहाँ होता है. यहाँ पर बहुत से तरीके हैं पवित्र प्रेम का वर्णन करने के लिए. एक बात जिसे हम आज अक्सर सुनते हैं वो है कि परमेश्वर प्रेम निरपेक्ष है, जबकि ये एक तरह से सच है. वर्णनकर्ता निरपेक्षता धर्मशास्त्र में कभी भी नहीं आता, ना ही धर्मशास्त्र में उसके प्रेम का वर्णन है. जैसे महान और अद्भुत प्रेम, संपूर्ण प्रेम, मुक्ति दिलाने वाला प्रेम और हमेशा हमेशा का प्रेम. ये बेहतरीन शब्द है क्योंकि निरपेक्ष शब्द पवित्र प्रेम के बारे में गलत प्रभाव डालता है. जैसे कि परमेश्वर सब कुछ सहन करता है और हमारा न्याय नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रेम निरपेक्ष है, या परमेश्वर हमारे ऊपर कोई मांग नहीं रखता. उसका प्रेम निरपेक्ष है या सभी परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में बचाए जाते हैं. उसका प्रेम निरपेक्ष है. उसका प्रेम निरपेक्ष है. परमेश्वर का प्रेम अपार है और ये अंत तक हमेशा रहेगा. लेकिन हम में से प्रत्येक के लिए इसका मतलब है कि कैसे हम उस प्रेम के जवाब पर निर्भर करते हैं. यीशु मसीह कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो. यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना और मैं उनके प्रेम में बना रहता हूँ. जारी रखने में या बने रहने में उद्धारकर्ता की प्रेम का अर्थ उसकी महिमा प्राप्त करना, उसके द्वारा निपुण होना. उसका अनुग्रह पाने को हमेशा मसीह में विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना शामिल है। अपने पापों का पश्चाताप करना, पापों के लिए डुबोकर बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा प्राप्त करना और आज्ञाकारिता के मार्ग में चलते रहना। परमेश्वर हमेशा से हमें प्रेम करता है, लेकिन हमारे पापों में नहीं बचाएगा। अमुलेख से लेकर जीजो राम के शब्द याद करो कि उद्धारकर्ता अपने लोगों को उनके पापों में नहीं बचाएगा, परंतु उनके पापों से। कारण ये है कि पाप के साथ हम अशुद्ध हैं और कोई अशुद्ध वस्तु स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते या परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकती। और पश्चाताप के कारण लोगों के पास पाप के उद्धार करने के लिए उसे परमपिता की ओर से शक्ति दी गई है। इसलिए उसने अपने स्वर्गदूत को पश्चाताप के उन नियमों के संदेश की घोषणा करने के लिए भेजा जो उद्धारकर्ता को उनकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ करता है। मॉर्मन की पुस्तक से हम मसीह की पीड़ा के बारे में सीखते हैं, उसके प्रेम का आखिरी प्रदर्शन कि वो न्याय दंड पर विजय प्राप्त करने वाली दया उत्पन्न कर सके और मनुष्य में पश्चाताप के लिए विश्वास ला सके। इस तरह दया न्याय की मांग को संतुष्ट करती है और उन्हें सुरक्षा की बाहों में ले लेती है, जबकि वो व्यक्ति जो अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करता उसे न्याय विधान का सामना करना पड़ता है। इस कारण केवल उसी के लिए मुक्ति की अनंत योजना लाई जाती है जो कि अपने पापों पर पश्चाताप करने विश्वास करता है। पश्चाताप उसका हमारे लिए उपहार है, बहुत ही प्यारे मूल्य पर। कुछ बहस करेंगे कि परमेश्वर प्रत्येक को आशीष देता है बिना किसी अंतर के। प्रमाण उदाहरण के लिए यीशु का पहाड़ पर संदेश में बतलाता है, परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता और धर्मों पर अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। सच में परमेश्वर मेह अपने सारे बच्चों पर बरसाता है, वो सारी आशीषें दे सकता है, सारी आशीषें जो कि प्रेम और नियम और न्याय और करुणा की अनुमति देती हैं, और वो हमें वैसा ही उदार बनने का आदेश देता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तो भी परमेश्वर की महान आशीषों आज्ञाकारिता की शर्तों पर है। अध्यक्ष राल्स एम नेल्सन समझाते हैं, परमेश्वर के प्रेम की चमक का गुलदस्ता अनंत जीवन शामिल है, आशीषें जिसके हमें योग्य होना है, न कि अयोग्यता अपेक्षित होने की हकदार है। पापी उसकी कामना को अंके अपनी इच्छा से मनवाएगा और चाहेगा वो उसे उसके पापों में आशीष दे। यदि वे हर कोई उसके सुंदर गुलदस्ते का आनंद लेने की अभिलाषा करता है, उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। व्यक्ति के पश्चातापी समर्पण से परे दोष रहित और कलंक रहित वादा के साथ अंतिम दिन में तुम ऊपर उठा लिए जाओगे। यहाँ पर एक दूसरा अत्यधिक दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का है, उसके प्रेम में बने रहने के अधिकार को पहचानने की पूरी संभावना देता है, जहाँ तक वैसा है जैसा अध्यक्ष डेटर बेकडोफ कहते हैं, परमेश्वर की अनुकंपा सिर्फ हमारे पहले किए गए मासूम कामों से नहीं होती, उसका उद्देश्य काफी ऊंचा है। वो अपने पुत्र और पुत्रियों को अपने समान बनाना चाहता है। परमेश्वर के प्रेम में इस तरह बने रहने का मतलब है उसकी इच्छा पर पूरी तरह से समर्पण करना। इसका अर्थ है उसके सुधार जब जरूरत हो ग्रहण करना, जिससे प्रभु प्रेम करता है और उसे ताड़ता देता है। इसका अर्थ यह है कि दूसरे से प्रेम और सेवा करो, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया और सेवा की। इसका मतलब सीखना है सेलेस्टियल राज्य के नियम को मानना, ताकि हम सेलेस्टियल महिमा का पालन कर सकें। उसके लिए हमें बनना है जो हम बन सकते हैं, जो हम बन सकने में सक्षम है। स्वर्गीय पिता हमें प्रतिफल देता है कि अगर मनुष्य पवित्र आत्मा के आकर्षणों पर आकर्षित नहीं होगा और अपने स्वाभाविक प्रकृति को त्याग कर प्रभु मसीह के प्रायश्चित द्वारा संत बनकर तथा बच्चों की तरह आज्ञाकारी, विनीत, दीन, सहलशील, प्रेम में परिपूर्ण होकर उनकी सारी बातों को, जिन्हें प्रभु उनके लाभों के लिए लागू करता है, उसी तरह स्वीकार करता है जैसा बच्चा अपने पिता की बातों को स्वीकार करता है। हेलेन केलर की कहानी कुछ दृष्टांत है, सुझाव देती है कि कैसे पवित्र प्रेम इच्छुक आत्मा को बदल सकता है। हेलेन का जन्म 1880 में यूनाइटेड स्टेट में अलबामा शहर में हुआ था। जब वो 19 महीने की थी, वो अनडायग्नोस्ड बीमारी से ग्रस्त थी जिससे वो दृष्टिहीन और बहरी हो गई थी। वो बहुत ही बुद्धिमान थी, जैसे वो समझने और आसपास की बातों को जानने की कोशिश करती थी तो निराश हो जाती थी। जब हेलेन ने परिवार के सदस्यों के हिलते लंबों को महसूस किया और जाना कि वे उसका प्रयोग बोलने में करते हैं, तब दूर चली गई क्योंकि उनकी बातचीत में जुड़ने के योग्य नहीं थी। 6 साल की आयु में हेलेन को वार्तालाप करने की जरूरत थी और उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी कि वो रोज कभी कभी घंटे घंटे में गुस्सा होती थी। हेलेन के बालकों में एक शिक्षिका अपनी बेटी के लिए लगाई, उसका नाम एनिस लेविन था। जैसे हमारे पास यीशु मसीह एक जो हमारी कमजोरियों को समझाता है, एने ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया, गहन मेहनत की और हेलेन की दुर्बलता को समझा था। 5 साल की उम्र में एनिल की आंखों की बीमारी हो गई जिसके कारण आंखों में भयानक दर्द होने लगा और लगभग वो अंधी हो गई। जब एन 8 साल की हुई उनकी माँ मर गई। उसके पिता और उसके छोटे भाई जिमी को छोड़ दिया और उन्हें पुअर हाउस में भेज दिया गया जहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ जिमी 3 महीने बाद ही मर गया था। उसके दृढ़ आग्रह के द्वारा एने को दृष्टिहीनों और दृष्टि में खराबी के लाभ के लिए पर्किंस स्कूल में प्रवेश मिल गया जहाँ वो वैभवशाली हुई। एक ऑपरेशन के बाद उसकी दृष्टि में सुधार आया, उसकी वजह से वो पढ़ने में सक्षम हुई। जब हेलेन केलर के पिता ने पर्किंस स्कूल में संपर्क कर खोजा कि किसी को उसकी बेटी के लिए शिक्षिका को चुना जाए, शुरू में वो कोई मोहक अनुभव नहीं था। हेलेन अपनी शिक्षिका को मारती नोचती और उसका एक दंत तोड़ दिया था। आखिरकार जब नियंत्रण में आया, हेलेन के साथ की संपत्ति पर एक छोटे से कॉटेज में चले गए। धैर्य और दृढ़ संकल्प के द्वारा आखिरकार उसने बच्ची का हृदय और भरोसा जीत लिया। सामान्यतः जैसा कि हम भरोसा करते हैं न कि अपने पवित्र शिक्षक का अवरोध करते हैं, वो हमारे साथ काम कर संपन्न करता और नई सच्चाइयों के लिए ऊपर उठाता है। हेलेन की मदद कर शब्दों को सीखा। एने सामान्य वस्तुओं का नाम उसकी हथेलियों पर अपनी उंगली से करती थी। हेलेन को उंगली का खेल पसंद आया परंतु समझ नहीं पाती उस क्षण तक जब एने शब्द का उच्चारण पानी पानी को हाथ से ऊपर रखकर करती थी। हेलेन बाद में लिखती है, अचानक मुझे लगा धुंधली सी चेतना जैसे कुछ खो गया हो और इसी तरह भाषा का रहस्य मुझ पे प्रकट हुआ। मैं जानती थी कि पानी का मतलब कुछ ठंडा, कुछ मेरे हाथ पे बहता हुआ। वो जीवित शब्द ने मेरी आत्मा को जगा दिया, उसने अपनी ज्योति आशा आनंद उसे आजाद किया। हर चीज का एक नाम और हर नाम एक नए विचार को जन्म देता था। जैसे हम घर लौटते हर वस्तु को अब मैंने छू कर जीवन के साथ तर्कश के लिए लगी रही थी। जैसे हेलेन केलर वेस्क में बढ़ती गई, वो अपने प्रेम की भाषा के लिए जाने जानी लगी। उसका गुण एक लेखक के रूप में और उसकी उत्तम बोली एक लोक जनवार्ताकार की। मूवी में हेलेन केलर के जीवन पर दर्शाया गया है। उसके अभिभावकों ने एनिस लेविन के काम से संतुष्टि दर्शाई थी। कभी उनके घर में असभ्य बेटी को किसी हद तक संभाला कि हेलेन रात्रि भोज में सभ्यता से बैठेंगी, खाना खाएंगी और भोजन के अंत में नैपकिन मोड़ कर रखेंगे। लेकिन एने जानती थी हेलेन अति से अति सक्षम थी और उसने बनने में अद्भुत योगदान दिया था। यहाँ तक हम रजामंद हो सकते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या किया कि साधारणता से हम जो हैं सो हैं, जबकि उद्धारकर्ता हमारी उत्तम संभावना की योग्यता को समझता है कि हम सिर्फ देखते हैं, दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। हम में से हर कोई अपने भीतर की पवित्र संभावना में उल्लास को खुलकर अनुभव कर सकता है, वैसे ही जैसे खुशी हेलेन केलर ने महसूस की थी जब शब्द जीवन में आए थे, उसकी आत्मा को ज्योति दी और उसे आजाद किया। हम में से प्रत्येक परमेश्वर से प्रेम कर सेवा कर सकते हैं और हमारे सहभागियों को आशीष देने के लिए नियुक्त करते हैं, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख से नहीं देखा और कान से नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे जो परमेश्वर ने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। चलिए विचारते हैं परमेश्वर के कीमती प्रेम के मूल्य को। यीशु प्रकट करता है कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित और दोनों शारीरिक और आत्मिक मृत्यु से हमारी मुक्ति, उसकी पीड़ा उसका कारण, यहाँ तक परमेश्वर सब में महान दर्द के कारण कांपते हुए रोम रोम से रक्त बहता हुआ आत्मा और शरीर की पीड़ा को सहा और यदि हो सके तो ये कठोर मुझसे टल जाए। गत समनी की उसकी पीड़ा और क्रूस पर अत्यधिक कोई भी नस्वरता में सहन नहीं कर सकता। इसके बावजूद उसका प्रेम उसके पिता और हमारे लिए वो अंत तक रहेगा, जैसे परिणाम स्वरूप दोनों अमृत और अनंत जीवन हमें दे सकता है। परिणाम स्वरूप कोमल हल्के टोकरी में रखकर एक दूसरे के ऊपर बल्ली से किया जाता, उस वजन से पहला और अच्छा तेल आता, फिर उस पर भार रखकर टोकरी के ऊपर लटकाया जाता। अधिक तेल बनाने के लिए आखिर में आखिरी बूंद तक निकालते, कड़ी पत्थर के साथ भारी एक तरफ से होती जाती कुचलने की अधिक क्षमता से, और हाँ तेल खूनी लाल हो जाता है जैसे पहली धार निकलती है। मैं मत्ती के उद्धारकर्ता लेख के बारे में सोचा, जैसे वो गत समनी में प्रवेश करता है उस महत्वपूर्ण रात, और वो उदास और व्याकुल होने लगा। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। तब जैसे मैंने कल्पना की कि विपत्ति और गंभीर हो गई, वो दूसरी बार सहायता के लिए आग्रह करता है और उसकी पीड़ा चरम पर पहुंची। तीसरी बार वो अंत तक वेदना में रहा जब तक न्याय ने आखिरी बूंद तक संतुष्टि न दी, या उसने हमारे मुक्ति के लिए किया था। पवित्र प्रेम क्या ही अनमोल उपहार है। वास्तव में परमेश्वर किसी के लिए रोएगा जो इसे नकारेगा, आज्ञाओं का पालन करो। आप उससे प्रेम नहीं करते जो आपसे पहले प्रेम करता हो। क्या आप उससे मित्र नहीं हैं जिसने अपना जीवन आपके दोस्तों के लिए दिया? फिर उसकी आज्ञाओं का पालन करो। क्या आप उससे प्रेम में नहीं बने रहते हो और सब कुछ प्राप्त करते हो जो अनुकंपा से देता है? फिर उसकी आज्ञा का पालन करो। मैं प्रार्थना करता हूँ,
then keep his commandments. Will you not abide in his love and receive all that he graciously offers you? Then keep his commandments. I pray that we will feel.
मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम पूरी तरह से उसके प्रेम में बने रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
When I was a young boy, my parents received.
जब मैं एक युवक था, मेरे माता-पिता को एक भेंट प्राप्त हुई जो मेरे भाई डेविड और मेरे लिए एक आकर्षण बन गई। भेंट स्वर्ण पट्टे का एक छोटा आकार था जो अध्यक्ष जोसेफ स्मिथ को दूत मरोनी ने दी थी। जैसे कि मैं याद करता हूँ, पट्टियों के आकार में धातु के 10 या कुछ पन्नों पर कुछ शब्द लिखे थे, किंतु उन पन्नों ने हमारा ध्यान नहीं पकड़ा। हमें पुनर्स्थापना की कहानियां सुनाकर बड़ा किया गया था। हम जानते थे और प्राथमिक में स्वर्ग पट्टियों के विषय में गया भी था कि वह एक गहरे पहाड़ के कोने में छुपाई गई थी और मरोनी दूत ने वह जोसेफ स्मिथ को पहुंचाई। जैसे कि हमारे युवा दिमाग की जिज्ञासा घूमी, एक चीज थी जो हम वास्तव में देखना चाहते थे, क्या लिखा हुआ था उन छोटे आकार की पट्टियों के भागों में जो दो छोटे धातु के बंधन से सुरक्षित रूप से मोहबंद थी। पट्टियां मेज के अंत पर कई दिनों तक बैठी रही जब तक कि हमने जिज्ञासा से सबसे अच्छा ना किया। हालांकि हम यह अच्छे से समझ गए थे कि यह असली पट्टियां नहीं थी जो कि मरोनी ने दी थी। हम मोहरबंद हिस्सा देखना चाहते थे और ऐसे ही कितने अवसरों पर मेरे भाई और मैंने मक्खन की धुरियों का प्रयोग करने की कोशिश की, पुराने चम्मच और ऐसी ही कई और चीजों में से हम सोच सकते हैं, और उन मोहरबंद भागों को अलग करने के लिए ताकि इतना देख सके कि उनमें क्या था, परंतु इतना नहीं कि छोटे बंधन टूट जाते। हम इतने होशियार तो थे कि लड़कपन की जिज्ञासा से अपनी शरारतों का निशान नहीं छोड़े। हमारी निराशा और निष्फलता से ये कोशिशें थालियों की भेदी की ओर हमेशा सफल थी। मैं आज भी नहीं जानता क्या यदि कोई चीज उस मोहरबंद भाग के नीचे छुपाई गई, परंतु आज तक की हमारी कहानी का सबसे लज्जाजनक भाग यह है, मुझे कोई आभास नहीं है कि धातु के उन पत्तों के भागों में क्या लिखा था जो कि पढ़ना चाहिए था। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि इन पन्नों में पुनर्स्थापना की कहानी और जोसेफ स्मिथ और तीन और आठ साक्ष्यों की गवाही जिन्होंने असली पट्टियां देखी जो कि मरुनी ने दी थी। इस संसार की रचना से हमारे पिता जो स्वर्ग में है ने अपने बच्चों को भविष्य वक्ताओं के द्वारा दिशा नेतृत्व और निर्देश दिए हैं। हमारी शिक्षा और विकास के लिए उनके शब्द इन भविष्य वक्ताओं द्वारा दिए गए हैं और धर्मशास्त्र में संचित किए गए हैं। नफी ने इस प्रकार से विवरण दिया, क्योंकि धर्म ग्रंथों में मेरी आत्मा आनंद विभोर होती है, मेरा हृदय उनके मनन में मग्न है और मैं उन्हें अपनी संतानों की शिक्षा और लाभ के लिए लिख रहा हूँ। देखो, मेरी आत्मा प्रभु की बातों में आनंदित है और जिन बातों को मैंने देखा और सुना उन पर मेरा हृदय लगातार मनन कर रहा है। इसके अतिरिक्त पिछली व्याख्या के दौरान और इन पूरे हुए समय की आखिरी व्यवस्था में प्रभु की गिरजा के योग्य सदस्यों को पवित्र आत्मा की निरंतर संगति से आशीषित किया गया है, जो कि हमारे आत्मिक विकास और शिक्षा में साथ देती है। अपने भाइयों के मेहनती स्वभाव को जानते हुए मैं कल्पना कर सकता हूँ कि हमारे माता पिता के घर में उसने उन धातु के पन्नों पर लिखे गए सारे शब्दों को पढ़ा, परंतु मैंने उन सरल और मूल्यवान सच को अनदेखा किया और बजाय इसके उन चीजों को ढूंढने में अपने प्रयास को लगाया जो कि प्रकाशित होने के लिए नहीं थी। दुर्भाग्यपूर्ण हमारा विकास और शिक्षा कुछ समय के लिए धीमी या कुछ बुरी कल्पनाओं से थालियों की भेदी की इच्छा से थम भी सकती थी। ऐसी प्रक्रियाएं हमें उन चीजों की खोज की ओर ले जाती हैं जिन्होंने समझा उस समय में आवश्यक नहीं है। इस पूरे में उस सुंदर सच को देखना कर सकते हैं जो हमारे या हमारी परिस्थितियों के लिए थी। वह सच उनका विवरण लिखा नफी ने हमारी शिक्षा या लाभ के लिए है। नफी के भाई याकूब ने सिखाया, देखो प्रभु के काम महान और आश्चर्यजनक हैं। उनके रहस्य की गवाहियों को खोजना कितना कठिन है और उनकी सब मार्गों को समझ पाना मनुष्य के लिए असंभव है। याकूब के शब्द सिखाते हैं कि हम थालियों के भेदी सफलतापूर्वक नहीं हो सकते था परमेश्वर के रहस्यों को उनके लिए जबरदस्ती प्रकाशित नहीं कर सकते। बजाय इसके परमेश्वर के रहस्यों को हमारे लिए इनकी इच्छा और पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा ही खोला जा सकता है। याकूब कायम रखते हैं और कोई भी मनुष्य उनके मार्गों को नहीं जानता। जब वह इस पर इन्हें प्रकट ना करे, इसलिए भाइयों परमेश्वर के प्रकटीकरण की उपेक्षा मत करो, क्योंकि देखो उनके वचन की शक्ति के द्वारा मनुष्य पृथ्वी पर आया तो क्यों वह पृथ्वी को आज्ञा नहीं दे सकता या उसके ऊपर उसके हाथों की कारीगरी इसकी इच्छा और मर्जी से क्यों नहीं हो सकती। इसलिए भाइयों प्रभु को सलाह देने का प्रयास ना करें, लेकिन इसके हाथों से सलाह लें। परमेश्वर के रहस्य को समझने के लिए या उन चीजों को जो कि केवल प्रकटीकरण को समझाए या सकते हैं, हमें नफी के कारण उदाहरण करना चाहिए जिन्होंने कहा, और ऐसा हुआ कि उस समय में नफी आयु में बहुत छोटा था, फिर भी शरीर से अपनी अवस्था से अधिक हृष्ट पुष्ट और बलवान था और परमेश्वर के भेदों को जानने के लिए मेरी बड़ी अभिलाषा थी। इसके लिए मैंने प्रभु को पुकारा और सुनो, उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मेरे हृदय को इतना विनम्र किया कि मैंने अपने पिता द्वारा कहे गए हर एक शब्दों पर विश्वास किया। प्रभु ने स्वयं नफी को आगे समझाया कि उसने अपने विश्वास का आभास किया, उसने मन की दीनता से ढूंढा और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। ज्ञान की खोज में नफी के उदाहरण में शामिल था एक वास्तविक इच्छा, विनम्रता, प्रार्थना, भविष्यवक्ता में विश्वास और विश्वास में अभ्यास, लगन, आज्ञाकारिता या खोज का तरीका मेरे थालियों के भेदी के बड़े विरोध में है या उन चीजों की का जबरदस्ती से समझना जो कि प्रकटीकरण के प्रभु के समय सरणी और पवित्र आत्मा की शक्ति से होगी। इस आधुनिक युग में हम इस अपेक्षा पर ना आए कि ज्ञान तुरंत ही प्राप्त होना चाहिए। जब ज्ञान का जानकारी आसानी से जानने योग्य उपलब्ध ना हो, उसे अक्सर खारिज या अविश्वासी कर दिया जाता है। क्यों जानकारी इतनी अधिक है, व्यक्तिगत प्रकटीकरण पाने के लिए कुछ बेराद इन उपलब्ध सूत्रों को अधिक प्रमाणिकता उसके अनजान सूत्र से देते हैं, बजाय उसे प्रभु के स्थापित रूपों में प्राप्त करने के। याकूब हो सकता है हमारे समय का विवरण दे रहा हो जब उन्होंने कहा, लेकिन देखो, उन्होंने स्पष्टता के शब्दों अनदेखा कर दिया, उन बातों की खोज करने लगे जिसे वे समझते थे। इसलिए उनके अंधेपन के कारण, यह अंधापन लक्ष्य से परे देखने के कारण आया था, उनका पतन अवश्य होना था, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्पष्टता को उनके वापस ले लिया। उन्हें वे बता दी जो कि वे नहीं समझ सकते थे, क्योंकि उन्होंने इसकी इच्छा की थी। इसकी तुलना में अध्यक्ष डिटर एच उड्रॉफ की सलाह है, उन्होंने प्रचारकों के लिए बोला, परंतु उनके शब्द समान रूप से उतने ही उपयुक्त आत्मिक सच ढूंढने वालों के लिए है। जब प्रचारकों में यीशु मसीह के लिए विश्वास होता है, उन्होंने कहा वे प्रभु में पर्याप्त विश्वास करेंगे उनके नियमों का पालन करने के लिए, चाहे वह पूर्ण रूप से भी इनका उनके लिए कारण न समझे। उनका विश्वास उनके लगन और उसके कार्य से व्यक्त होगा। पिछले अप्रैल के महासम्मेलन के दौरान एल्डर डेल्विन एच ऑक्स ने विवरण दिया, गिरजा अपनी पूरी कोशिश उन रिकॉर्डों को प्रादर्श करने की कर रहा है जो हमारे पास है, परंतु उन सबको छापने के बाद भी हमारे सदस्य कुछ बुनियादी प्रश्नों के साथ रह जाते हैं, उन्हें सुलझाए नहीं जा सकता। कुछ चीजें केवल विश्वास से सीखी जा सकती है। प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने भी यही सिद्धांत सिखाया, देखते हुए कि नियमित रूप से मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता है, प्रभु को शिक्षित करने का स्वरूप अनंत है। गौर करें पुराने नियमों के इन कथन पर, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना। यशाया ने विवरण दिया कि क्यों मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। नफी ने एक और साक्षी दी जब उन्होंने घोषित किया, हे प्रभु, मैंने आप में विश्वास किया है और आप में हमारा विश्वास करूंगा। प्रभु में विश्वास और भरोसा हमारे लिए आवश्यक करता है। हम उसकी बहुमूल्यता को अपनी से बेहतर स्वीकार करें। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी योजना आत्मिक विकास और शिक्षा की सबसे अधिक क्षमता प्रदान करती है। हमसे कभी भी अपेक्षा नहीं की रखी गई कि वह वस्तु के उत्तम पर नाश्वर अस्तित्व में बजाय उसके हमसे अपेक्षा है उन वस्तुओं की आशा करने की जो नहीं देखी, जो सच है। नफी के महान विश्वास के होते हुए भी जब उन्होंने अपनी समिति समझ स्वीकार करते हुए दूत को उत्तर दिया जिसने उनसे पूछा, क्या तुम परमेश्वर की कृपा जानते हो? नफी ने कहा, मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि वह अपने बच्चों से प्रेम करता है, फिर भी मैं सभी बातों का अर्थ नहीं जानता। वैसे ही अल्मा ने अपने पुत्र हिलामन को व्यक्त किया, अब इन भेदों को अभी पूरी तरह से समझ पर प्रकट नहीं किया जा गया है, इसलिए मैं धीरज रखूंगा। मैं अपनी साक्षी व्यक्त करता हूँ कि हमारे स्वर्गीय पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। वैसे ही नफी और आलमा की मैं सबका अर्थ नहीं जानता, ना ही मुझे सब कुछ जानना चाहिए। वह प्रकट की जाएगी और मुझे धीरज से प्रभु का इंतजार करना है, जानते हुए मेरे पास गवाही है कि यह सब सच है, और आप उसके पास भी इन चीजों की गवाही है और आपके पास की यह सच है। धर्मशास्त्र आपके सामने बिछा है, हाँ, और सब चीजें प्रमाण देती हैं कि परमेश्वर है, हाँ, पृथ्वी भी और हम वह सब चीजों पर है, यहाँ यह गति है और सारे ग्रह जो नियमित रूप से चलते और साक्षी देते हैं कि एक परम रचयिता है। जैसे कि हम स्वीकार करते हैं कि हम एक ज्ञानी और समर्पित स्वर्ग में पिता की कार्यशूलता है, तो फिर हमें ना हम सब उन्हें अपनी आत्मिक विकास और शिक्षा के लिए मार्गदर्शक बनाएं, उनकी इच्छा और आनंद अनुसार अपेक्षित अपनी वह जीवित हैं। यीशु मसीह उनके इकलौते पुत्र और मानव जाति के मुक्तिदाता हैं, क्योंकि मसीह के असीम बलिदान से उसके पास हमें एक अनंत दिनों में मार्गदर्शन अपने ज्ञान और अग्रदृष्ट से जोसेफ स्मिथ उनके भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने चुना गया है उनके राज्य को पुनर्स्थापित कर इस पृथ्वी पर भरने के लिए। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन आज आपके जीवित भविष्यवक्ता और प्रतिनिधि हैं। इसकी साक्षी मैं देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
My dear brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं गिरजा के युवा लोगों को बोलना चाहता हूँ, साथ में हमारे अद्भुत प्रचारकों से। वास्तव में भाइयों और बहनों जो दिल से युवा हैं, गर्म जोशी से सुनने को आमंत्रित करता हूँ। पिछले 21 अगस्त को प्रेसिडेंट रसेल एम एनेल्सन ने सुंदर सपोरा टेंपल का समर्पण किया था, जापान में तीसरा मंदिर। सपोरा टेंपल नॉर्दर्न जापान में होकाइडो में बनाया गया है। यूटा के समान होकाइडो को उद्योगपति कठिन परिश्रम करने वाले पर्थ दर्शकों द्वारा बसाया गया था। 1876 में एक नामी शिक्षक नाम डॉक्टर विलियम क्लार्क को होकाइडो में पढ़ाने बुलाया गया था। वे जापान में सिर्फ 8 महीनों से रह रहे थे, लेकिन उनकी मसीही आत्मा ने नित्य प्रभाव उनके गैर मसीहो छात्रों पर छोड़ा था। जाने से पहले उन्होंने अपने छात्रों को विदाई संदेश दिया, जो कि इस कसे पद में अमर हो गया। वे कहते हैं, लड़को अभिलाषी रहो। मसीह के लिए अभिलाषी होना, उनका आदेश मसीह के लिए अभिलाषी होने, मैं आज के अंतिम दिन के संतों के प्रत्येक निर्णय में मदद कर सकता है। मसीह के लिए अभिलाषी होना, इसका क्या मतलब है? मसीह के लिए अभिलाषी होना का मतलब प्रेरित बने रहो, केंद्रित और उसके काम में समर्पित रहो। मसीह के लिए अभिलाषी बने रहो कदाचित का मतलब है कि हम जनता के आदर के लिए अकेले। मसीह के लिए अभिलाषी बने रहो का मतलब हमें अपने विश्वास और मेहनत से अपने वार्ड और शाखाओं में बिना शिकायत किए और खुशी के साथ सेवा करनी है। हमारे प्रचारक सारी दुनिया में सेवा कर रहे हैं का सुंदर उदाहरण वो जो सच में मसीह के लिए अभिलाषी हैं। कुछ सालों पहले बहन यमाशिता और मैंने जापान नागोया मिशन में सेवा की थी। हमारे प्रचारक बहुत ही मसीह में अभिलाषी थे। उन प्रचारकों में से एक युवा प्रचारक नाम एल्डर कोवन था। एल्डर कोवन का सीधा पैर नहीं था, क्योंकि एक साइकिल दुर्घटना हो गई थी जब वह युवा था। कुछ सप्ताह बाद वह मिशन पर गया। मुझे एक फोन कॉल उसके सहभागी से मिला। एल्डर कोवन का प्रोस्थेटिक पैर टूटा गया था। एल्डर कोवन का पैर टूट गया जब वह साइकिल चला रहा था। हम उसे अच्छे से मरम्मत करने के लिए ले गए और वहां एक नीची कक्ष था। मैंने उसका पैर पहली बार देखा। मैंने जाना कि कितना दर्द झेल रहा था। उसके प्रोस्थेटिक पैर की मरम्मत हो गई थी और वह अपने क्षेत्र में लौट गया। हालांकि जैसे 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 सप्ताह निकलते गए, प्रोस्थेटिक लगातार बार बार टूटता गया। क्षेत्र का मेडिकल एडवाइजर ने सिफारिश किया कि वह घर चला जाए, संभावना मिशन में दोबारा नियुक्ति के लिए। मैंने इस सलाह का विरोध किया, क्योंकि एल्डर कोवन एक महान प्रचारक था और उसकी अभिलाषा वही जापान में करने की थी। धीरे धीरे एल्डर कोवन ने अपनी शारीरिक सीमा की ओर प्रस्थान किया। इसके बावजूद वह ना तो बड़बड़ाया और ना शिकायत की। फिर से मैंने सलाह दी कि एल्डर कोवन को स्वीकृति सेवा उस जगह का जहां साइकिल चलाने की जरूरत ना हो दी जाए। मैंने इस परिस्थिति पर चिंतन किया था, एल्डर कोवन के और भविष्य के बारे में मैंने सोचा। मैंने इस मुद्दे पर प्रार्थना की। मैंने प्रभाव को महसूस किया कि हाँ, एल्डर कोवन को घर लौटना चाहिए और दोबारा नियुक्ति होने का इंतजार करना होगा। मैंने उसे फोन किया और अपने प्रेम और चिंता व्यक्त की और उसे अपना निर्णय बताया। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसके रोने की आवाज दूसरी तरफ से सुनी। मैंने कहा, एल्डर कोवन, आपको अभी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कल बात करूंगा। कृपया मेरे अनुरोध पर सच्ची प्रार्थना से विचारें। जब मैंने उसे अगली सुबह बुलाया, उसने विनम्रता से कहा कि वह मेरी सलाह का अनुसरण करेगा। मेरे आखिरी साक्षात्कार उसके साथ मैंने उससे यह प्रश्न पूछा, एल्डर खावन क्या आपने अपने मिशन याचिका को मिशन को भेजने का अनुरोध किया वहां जहां साइकिल ना चलानी पड़े? उसने कहा हाँ अध्यक्ष मैंने की थी। मैंने जवाब दिया एल्डर खावन आपको जवान नगोया मिशन से बुलाया गया है जहां पर आपको साइकिल चलानी होगी, क्या आपने अपने स्टेक अध्यक्ष को यह बताया था? मैं अचंभित हुआ उसके उत्तर से। उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया, मैंने संकल्प किया कि यदि प्रभु ने मुझे वहां बुलाया है मैं जिम जाऊंगा और अपने शरीर पर परीक्षण व साइकिल चलाने में योग्य बनूंगा। हमारे साक्षात्कार की समाप्ति में उसने मुझसे आंखों से आंसू के साथ प्रश्न पूछा, प्रेसिडेंट यामाशिता मैं क्यों जापान आया था, क्यों मैं यहां हूं? मैंने बिना हिचकिचाहट के उसे उत्तर दिया, अरे कॉवेन आपके आने का मैं एक कारण जानता हूं, आप मेरे भले के लिए आए। मैं अब समझा हूं कि क्या यही महान युवा पुरुष के साथ मैं सेवा कर रहा हूं। मैं आशीषित हुआ आपको जानकर। मैंने प्रसन्नता से रिपोर्ट की एल्डर कॉवेन अपने प्रिय घर लौट रहे हैं और मिशन में सेवा के लिए फिर से नियुक्ति किए जाए वहां जहां कार से यात्रा की जा सकती है हो। मैं गर्व महसूस करता हूं न सिर्फ एल्डर कॉवेन के लिए अपितु संसार भर के सारे प्रचारकों के लिए जो बिना बड़बड़ाए या शिकायत किए स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद आपका एल्डर एंसेस्टर्स, आपके विश्वास, आपका ध्यान केंद्रित करने का और मसीह के लिए पक्का अभिलाषी होने के लिए। मॉर्मन की पुस्तक में बहुत से लेख हैं उन्हें जो मसीह के अभिलाषी रहे थे। छोटा अल्मा छठे अल्मा में एक युवा पुरुष गिरजे और उसके सदस्यों को यातना देता था। वह बाद में उसका अद्भुत तरह से हृदय परिवर्तित हुआ और शक्तिशाली प्रचारक के रूप में सेवा की थी। उसने प्रभु का निर्देशन खोजा था और वह अपने साथी के साथ आशीषित हुआ जैसे वह सेवा उसके साथ करता था। प्रभु ने उसे समर्थ दी और वह परीक्षा से ऊपर आया जिसे वह झेल रहा था। इस अल्मा ने अपने पुत्र इलामान को निम्नलिखित सलाह दी कि जो कोई परमेश्वर का विश्वास रखेगा उसकी परीक्षाओं में कष्टों और दुखों से सहायता मिलेगी। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, अपने सभी कामों के लिए प्रभु से राय लो और वह तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी निर्देशन करेगा। हमारा दूसरा बेटा उसका युवा अवस्था में गिरजे से दूर रहता था। जब वह 20 साल का हुआ उसने एक अनुभव किया कि उसने उसका जीवन बदल दिया था। प्रेम, प्रार्थना और उसके परिवार की सहायता और गिरजा के सदस्यों ने सहायता की और आखिरकार प्रभु ने की दया और महिमा से वह गिरजा में लौट आया। उसके बाद वह वाशिंगटन सीटल मिशन में सेवा के लिए बुलाया गया था। वह शुरू में बहुत निराशा था, हर रात पहले 3 महीने वह बाथरूम में जाकर रोता था जैसे उसने तलाश कर समझा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। उसने साल भर के सेवा के बाद हमें एक ईमेल मिला जिसमें हमारी प्रार्थना का उत्तर था। वह लिखता है अभी मैं सही में परमेश्वर का और यीशु के प्रेम को महसूस कर सकता हूँ। मैं कठिन परिश्रम कर पुराने भविष्य वक्ताओं की तरह बनूंगा। हालांकि मैंने बहुत सी परेशानियों का अनुभव किया है, मैं सच में प्रसन्न हूँ। यीशु की सेवा करना वास्तव में सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर इससे अद्भुत और कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारी अपनी जिंदगियों में हम परीक्षाओं का अनुभव करते हैं लेकिन उस पर केंद्रित होते और आनंद की अनुभूति ले सकते हैं। यहाँ तक उनके बीच में हमारे मुक्तिदाता ही परम उदाहरण है। वह अपना पवित्र मिशन को समझता और परमेश्वर पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी था। क्या यही आशीषित चुनाव है या अद्भुत उदाहरण हमारी यादों में हर सप्ताह आता है जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं?
Understood his holy mission and was obedient to the will of God the Father. What a choice blessing it is to bring his one.
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम मसीह के प्रति अभिलाषी हैं। जब हम विश्वासी होकर सेवा करते हैं, विनम्रता से ग्रहण करते हैं, उदारता में बने रहते हैं, उत्साह से प्रार्थना करते हैं और योग्यता से लेते हैं, हम भी मसीह के लिए अभिलाषी हो सकें, जैसे हमारी कठिनाइयों और परीक्षाओं को धैर्य और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, आनंद को हमारे अनुभव के मार्ग में पाते हैं। मैं गवाही देता हूं कि प्रभु को आप जानते हैं, वह आपके संघर्ष और चिंताओं को जानता है, वह आपकी उसी सेवा करने की इच्छा लगन के साथ और हाँ यहाँ तक अभिलाषी को जानता है, वह आपको मार्गदर्शन दे और आपको आशीष जैसा कि आप करते हैं।
I testify that the Lord knows you. He knows your struggles and concerns. He knows of your desire to serve and yes, even ambition. May He guide and bless you as you do so. In the name of Jesus Christ.
Ishu ke naam se, Amen.
We are grateful for all who have spoken.
हम सब उन सब का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज दोपहर हमारे को बोला और प्रचारकों की गायक मंडली द्वारा दिया गया प्रस्तुत संगीत के लिए धन्यवाद देते हैं. हम जनरल अधिकारियों और जो भी प्रचारक विश्व के कहीं भी सेवा कर रहे हैं बहुत कीमती स्मार्ट और सुंदर मिस्टर हम भाइयों को याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे भाइयों की पौरात्य सभा इस सम्मेलन केंद्र में 6 बजे माउंटेन डेलाइट टाइम्स के अनुसार होगी. मॉर्मन गायक मंडली का राष्ट्रीय प्रसारण कल प्रातः 9:30 से 10 बजे माउंटेन डेलाइट टाइम्स के अनुसार होगा. इसके तुरंत बाद रविवार जनरल सम्मेलन सत्र आरंभ होगा. इस सत्र के हमारे अंतिम वक्ता 12 की परिषदों के वक्ता एल्डर डेलिन एच होंगे. उनके पश्चात गायक मंडली का इस सभा का समापन होप ऑफ इज़राइल का गीत गाकर करेगी. समापन प्रार्थना उसके बाद 70 के एल्डर एलन डी हेनी के द्वारा दी जाएगी.
Nearing the end of his earthly
उसके पृथ्वी की सेवकाई के समाप्त होने के निकट हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने अपने ईश्वर को आदेश दिया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत को जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो. मरकुस सारे मसीह इस आदेश के अंतर्गत आते हैं. प्रत्येक हर एक से सुसमाचार बैठते हैं. बहुत से इसे महान आदेश कहते हैं. अंतिम दिन के अंश वास्तव में इन्हें महान जिम्मेदारी से अधिक समर्पित हैं. हमें होना भी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है और इन अंत के दिनों में उसके पास पुनर्स्थापित आवश्यकता अतिरिक्त ज्ञान और आशीष उन्हें आशीष देने के समर्थ है. उद्धारकर्ता ने हम को सिखाया कि अपने भाई और बहनों की तरह सभी से प्रेम करो और हम उस शिक्षा का सम्मान करते हैं. पुनर्स्थापित समाचार सारे राष्ट्र वंश भाषाओं और लोगों को संदेश बांटने के द्वारा और साक्षी बनाने में यही ही अंतिम दिन के संत होने का अत्यावश्यक भाग और मतलब है. हम इसे आनंद भरा भाग्य सौभाग्य के रूप में देखते हैं. इससे अधिक आनंद से भरा और क्या हो सकता है. हम परमेश्वर के बच्चों को अनंत की सच्चाई बांटें. हम आज हमारे पास बहुत से साधन हैं सुसमाचार बांटने के लिए. हमें पहले के वंश में उपलब्ध नहीं थे. हमारे पास टीवी इंटरनेट और सोशल मीडिया चैनल हैं. हमारे पास बहुत से मूल्यवान संदेश हैं. पुनर्स्थापित सुसमाचार का परिचय देने के लिए हमारे पास बहुत से राष्ट्र में गिरजे की प्रखितियां है. हमारे पास प्रचारों की बड़ी हुई महान संख्या है. परंतु क्या हम इन सारे साधनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा प्रभाव से कर सकते हैं. मैं विश्वास करता हूं हम में से बहुत से कहेंगे नहीं. हमारी इच्छा अपनी पवित्र नियुक्ति जिम्मेदारी को अधिक भाव के साथ संसार भर में पुनर्स्थापित सुसमाचार की घोषणा कर पूरा करें. यहाँ पर बहुत से सुझाव हैं सुसमाचार को बांटने के जो कि व्यक्तिगत तौर पर सटेक या देशों में काम करेंगे. इसलिए क्योंकि हम संसार भर में के गिरजा हैं, मैं सुझाव पर बोलना चाहता हूँ जो कि सब जगह काम करेगा. नई से नई इकाइयों के अति प्रतिष्ठित में संस्कृति से अब यीशु मसीह का सुसमाचार को ग्रहणशीलता से संस्कृत और राष्ट्र में जो कि धर्म को विपरीत बढ़ता जा रहा है. मैं सुझाव पर बोलना चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उस व्यक्ति के साथ जो यीशु मसीह का विश्वासी है, साथ ही साथ जिसने उसका नाम कभी ना सुना हो, साथ ही साथ उस व्यक्ति के साथ जो अपनी वर्तमान जीवन के संतुष्ट हो. मैं क्या कह सकता हूँ कि सुसमाचार बांटने में आपके सहायक होंगे. आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमें प्रत्येक सदस्य को सहायता की जरूरत है और प्रत्येक सदस्य मदद कर सकता है, क्योंकि बहुत से काम करने के हैं। हमें पुनः स्थापित सुसमाचार को हर राष्ट्र, वंश, भाषा और लोगों के साथ बांटना है। हम सभी जानते हैं कि सदस्यों का प्रचारक कार्य में भाग लेना अत्यावश्यक है, दोनों परिवर्तित और रोकने के लिए। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने कहा है, अब समय है दोनों सदस्यों और प्रचारकों को एक साथ के ने आने का और प्रभु के बगीचे में काम कर आत्माओं को उसके पास लाने का। उन्हें हमारे लिए तैयारी का मतलब सुसमाचार को बहुत ही आत तरीकों से बांटने के लिए किया है, और वह हमारी सहायता हमारे कामों में करता है यदि हम विश्वास से उसके कार्य पूरा करते हैं। पुनर्स्थापित सुसमाचार को बांटना हमारे जीवन का मसीही कर्तव्य और सौभाग्य है। एल्डर क्विंटन एल कुक स्मरण करते हैं, प्रचारक कार्य सिर्फ एक 88 पियानो की किस्त नहीं है जिसे कभी कभी बजाया जाए। ये महत्वपूर्ण तार जो मिलकर संगीत देती हैं, जिसे लगातार बजाने की आवश्यकता हमारा सारे जीवन में हो। यदि हम लगातार लय और हमारे वचनबद्धता के साथ मसीह और यीशु मसीह का सुसमाचार में बने रहेंगे। यहाँ पर तीन चीजें हर सदस्य कर सकता है सुसमाचार को बांटने में मदद करके, बावजूद परिस्थितियों के जिसमें वह रहता और काम करता है। हम सभी को भी यह सब करना चाहिए। पहला, हम सहायता करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस उद्धार के काम के आत्मविश्वास भाग के साथ सारे प्रत्यन अभिलाषा से आरंभ होते हैं। दूसरा, हम अपने आप में आज्ञा का पालन कर सकते हैं। विश्वासी आज्ञाकारी सदस्य अति सच्चाई के और पुनर्स्थापित सुसमाचार के मूल्य के ठोस गवाह होते हैं, यहाँ तक कि अति महत्वपूर्ण विश्वासी सदस्यों के साथ उसकी आत्मा सदा सर्वदा साथ होगी। उन्हें यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार को बांटने के महान कार्य में भाग लेकर उन्हें मार्गदर्शन देगी जैसे वो खोजते हैं। तीसरा, हम प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो कुछ हम हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियों में करते हैं सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटने के लिए, यह भिन्न होता है। प्रचारकों के लिए प्रार्थना करना या अन्यों के लिए जो वे करते हैं प्रार्थना करना, हमें व्यक्तिगत रूप से क्या करना है के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें स्मरण रखना चाहिए कि प्रार्थनाएं इस तरह की प्रेरणा के लिए होनी चाहिए कि उत्तर मिले यदि वचनबद्धता के साथ हो। कुछ ऐसा ही धर्मशास्त्र जिसे वास्तविक संकल्प कहता हो या हृदय के पूरे उद्देश्य से प्रार्थना जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा आप प्राप्त करते हैं। प्रभु से वादा करें कि यदि वह आपको किसी से बोलने की प्रेरणा देता है, आप वैसा ही करेंगे। हमें प्रभु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि किसी विशेष समय पर कुछ के लिए और कुछ के लिए अतिरिक्त पुनर्स्थापित समाचार की सच्चाई के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम कभी भी अपने आप को न्यायाधीश के रूप में से ऊपर नहीं उठाते हैं कि कौन तैयार है और कौन नहीं। प्रभु अपने सभी बच्चों के हृदयों को जानता है, और यदि हम प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें, वह हमारी सहायता व्यक्तित्व दृढ़ में करेगा। वह जानता है और वह हमारी वाणी को सुनने को तैयार थे। प्रभु के प्रेरित होने के नाते मैं हर सदस्य को और गिरजा के परिवार के से प्रभु के लिए प्रार्थना उनकी मदद व्यक्तित्व को ढूंढकर तैयार करने की यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार का संदेश बांटने का निर्देशन करता हूं। एल्डर एम रसेल बैलर्ड ने यह महत्वपूर्ण सलाह दी, मैं सहमत देता हूं। प्रभु में भरोसा करो, वह एक अच्छा गडरिया है, वह अपनी भेड़ों को जानता है। यदि हम योगदान नहीं देते हैं, वह बहुत से जो पुनर्स्थापना का संदेश सुनना चाहेंगे वह चले जाएंगे। नियम बहुत ही साधारण है, प्रार्थना व्यक्तिगत और परिवार के साथ प्रचारकों के अवसर के लिए तैयार रहें। जैसा हम अपना विश्वास दर्शाते हैं, ये अवसर आएंगे बिना किसी जोर के, अवास्तविक जवाब के। ये ऐसा बहेगा जैसा हमारे प्रेम का स्वाभाविक परिणाम हमारे भाई और बहनों के लिए होगा। मैं जानता हूं यह सत्य है। मैं अपना वाद बताता हूं कि प्रभु में विश्वास सहायता करता है, हमें मार्गदर्शन देता है और इस अनंत महत्वपूर्ण प्रेम के काम में महान आनंद मिलता है। हम समझ पाएंगे कि सफलता सुसमाचार बांटने में लोगों के प्रेम के साथ आमंत्रित करके और उनकी मदद सच्ची भावना से करना कोई फर्क नहीं पड़ता उनका क्या जवाब हो। यहाँ पर कुछ और बातें हैं, हम सुसमाचार को प्रभावशाली तरह से बांट सकते हैं। हमें याद रखने की जरूरत है कि लोग सीखते हैं जब वे सीखने को तैयार होते हैं, ना कि जब हम सिखाने को तैयार होते हैं। हम किसी बात पर रुचि रखते हैं, जैसा महत्वपूर्ण पुनर्स्थापित गिरजे की अतिरिक्त सिद्धांत की शिक्षा, अक्सर अन्य किस बात में रुचि रखते हैं, अन्य और सतन सिद्धांत का परिणाम चाहते हैं, ना कि सिद्धांत। जैसा वे ध्यान रखते या अनुभव करते हैं अपने जीवन में यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार के प्रभाव का, वे आत्मा को महसूस करते और सिद्धांत में रुचि रखना आरंभ करते हैं, और वे भी रुचि ले जब वे अधिक आनंद को खोजते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं या जीवन के उद्देश्य को बेहतर समझते हैं। तथापि हमें ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक विवेक को खोजना है कि कैसे को रुचि से अधिक खोज सिखाने के बारे में पूछने की आवश्यकता है। यह बहुत सी अन्य बातों पर निर्भर होगा, जैसा कि एक अन्य व्यक्ति की वर्तमान हालत और उसके साथ हमारे रिश्ते। यहाँ एक अच्छा चर्चा करने का विषय है परिषद कोरम और सहायता संस्था के साथ। जैसा हम दूसरों को से बोलते हैं, हमें याद रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह और उसके सुसमाचार के बारे में अधिक सीखने में का निमंत्रण श्रेष्ठ है हमारे गिरजे के बारे में जानने का निमंत्रण से। हम चाहते हैं लोग सुसमाचार के लिए परिवर्तित हों, हमारा गिरजा के बारे में महसूस कर यीशु मसीह के लिए परिवर्तित हों। वे आगे जाना नहीं चाहते। बहुत से जो गिरजा के बारे में संदेहजनक हैं, वे भी उद्धारकर्ता के लिए प्रेम रखते हैं। पहले बात रखो, जब हम लोगों को पुनर्स्थापित सुसमाचार में परिचित करने के लिए दृढ़ता है, हमें यह कुछ इस तरह से करना चाहिए जब व्यक्ति के लिए विश्वसनीय परिवार या विचार हो। यहाँ तब हो सकता है जब दूसरों की परेशानी जिसे वे पहचानते हैं मदद करने की कोशिश करते हो, या जब हम उनके साथ स्थानीय सेवा गतिविधियों के काम करते हो, जैसा कि पीड़ा के तसल्ली देना, गरीब और जरूरतमंदों का ध्यान रखना या दूसरों के जीवन की योग्यता को बढ़ाना। हमारा प्रयत्न सुसमाचार बांटने का हमारे मित्रों के घेरे में और स्थाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। ओलंपिक्स के दौरान हमने रियो डे जेनेरियो में एक एलडीएस टैक्सी चालक ने सीखा, जिसने की 7 भिन्न भाषाओं में मार्मा की पुस्तक की कॉपी ली और उनको जो लेना चाहते थे एक दे दी। वह अपने आप को कैब ड्राइविंग मिशनरी कहता है। वह कहता है कि रियो डे जेनेरियो की सड़कें मिशन का स्थान है। क्लिटन एम क्रिस्टेंसन, जो एक प्रचारक सदस्य के रूप में भाव अनुभव किया था, कहते हैं कि पिछले 20 वर्षों में हमें ध्यान दिया है कि कोई भी यह संबंध के बीच रिश्तेदारी की गहराई नहीं रही, और संभावना है कि एक व्यक्तिगत सुसमाचार के बारे में सिखाने और रुचि दिखलाएगा। वार्ड विश्वप्रिक एक विषय प्रभुभोज सभा की योजना बना सकते हैं, जिसे सदस्य से निवेदन करते हैं कि रुचि रखने वाले लोगों को लाया जाए। वह सदस्य कम संचोक करेंगे उनके परिस्थिति परिचितों को ऐसी सभा में लाने को, क्योंकि वह ज्यादा निश्चित होंगे कि सभी की सूची अच्छे से बनाई गई होगी और गिरजा उस अच्छे से प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर और भी कई अवसर सुसमाचार को बांटने के हैं। उदाहरण के लिए, इस गर्मी में मुझे एक प्रसन्नता का पत्र मिला, एक नए सदस्य ने जिसने पूर्ण स्थापित सुसमाचार के बारे में सीखा था, जब उसको एक पुराने दोस्त ने फोन करके उसकी बीमारी के बारे में पूछा जिसे वह अनुभव कर रही थी। वह लिखती है कि मैं बहुत ही प्रसन्न थी, जैसे अपने आप को मेरे सम्मान प्रस्तुत किया था। प्रचारकों से सीखने के एक महीने बाद मैंने बपतिस्मा लिया, उस समय से मेरी जिंदगी सुधर गई। हम बहुत से ऐसे जीवनों को जानते हैं जिनका जीवन पुनर्स्थापित सुसमाचार के सुधार जाएगा, क्या हम उन तक पहुंच पाते हैं? हमारे युवा सदस्य आकर्षक और सामाजिक मीडिया के साथ निपुण, उन्हें अनोखे अवसर दूसरों को सुसमाचार के रुचि रखकर पहुंचने का देते हैं। निफायों के उदाहरणकर्ता प्रकट होने का वर्णन स्मरमन ने लिखा, और भीड़ के जिन बच्चों के विषय में कहा जा चुका है उसने उनको उपदेश दिया और उनके मुख खोल दिया और उसी के जवान में वर्चल किया। आज मैं कहा सकूंगा उनके अंगूठे को खोलो और वह वहां चला जाएगा। युवा उस तक जाओ। सुसमाचार बांटना बोझ नहीं परंतु आनंद है। क्या हम कहते हैं सदस्य प्रचारक कार्य यह कार्यक्रम नहीं है कि ऐसा, लेकिन एक प्यार का गुण है और आपके चारों तरफ जो है उन तक पहुंचे, यह साक्षी देने का भी एक अवसर है। कैसे हम अपने हमारे उधारकर्ता के पुनर्स्थापित सुसमाचार के बारे में महसूस करते हैं? एल्डर बॉलेट ने सिखाया था, एक हमारे परिवर्तन का अति विशेष सबूत है, और हम अपने जीवन में सुसमाचार के बारे में कैसे महसूस करते हैं कि हमारे स्वयं और दूसरों के साथ बांटने की है। मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूं जो कि संसार की ज्योति के जीवन है। यीशु उन्हें उसके पुनर्स्थापित सुसमाचार की ज्योति नश्वरता में हमारा रास्ता, उसका प्रायश्चित में हमें मृत्यु के बाद जीवन का आश्वासन अमृत की और दृढ़ता से बढ़ने का सामर्थ्य देती है, और उसका प्रायश्चित हमें अवसर देता है हमारे पापों से क्षमा पाने का, परमेश्वर के अंतर्गत उत्तम उद्धार की योजना का, अंतम जीवन की योग्यता परमेश्वर के सारे उपहारों में से महान है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Israel, Zion, and Zion, me choose. Our beloved Father in heaven.
हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, हम आज के दिन के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ पे इकट्ठा हो सकें और आपने हमें सिखाया है और जो भी हमने स्पीकरों को सुना है और जो भी हमारे मन में ख्याल आए हैं और हमारे भविष्य वक्ताओं के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, खास करके हमारे भविष्य वक्ता थॉमस स्पॉन्सन के लिए, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और हम आभार प्रकट करते हैं कि सुसमाचार फिर से एक बार रिस्टोर हो गया है और हमें इसकी पूरी तरह से समझ है और हम भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने जो शुरू करा था हम उसे जारी कर रहे हैं और हमारी मदद करें कि हम इस दिन के बाद और कल इन बातों पे चल सकें और दूसरों की मदद कर सकें और जो लोग भी परेशान हैं या किसी भी रूप से मदद चाहिए उन्हें हम पहुंच पाएं और मदद कर सकें हमारे भाइयों बहनों को, और हम आपसे प्रेम करते हैं। और हम ये सब कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 186th.
ये अंतिम दिनों के संतों की यीशु मसीह की गिरजे का 166वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन था। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए थे। इस सत्र का संगीत प्रोवो यूटा के प्रचार कर परीक्षण केंद्र से प्रचारकों की गायक मंडली द्वारा उपलब्ध किया गया था। इसका प्रसारण बॉनेवे डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित हैं।